ओम शांति। 5000 वर्ष का ये सृष्टि नाटक में हम सभी बच्चों को ये परम सौभाग्य है, आधा कल्प से हम किस भगवान को ढूंढा, प्यार किया, भक्ति किया, उनका एक क्षण मात्र का दर्शन के लिए हम मेहनत किया, तो जन्म जन्मांतर का भक्ति का फल स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने आके हमको सच्चा राह बताया, अपना सच्चा परिचय बताया। और बाबा अपना सच्चा परिचय बताया, हमारा सच्चा परिचय बताया, सृष्टि का आदि मध्य अंत का सभी ज्ञान बताया। तो इस 5000 वर्ष का सृष्टि नाटक में ये एक ही सर्वश्रेष्ठ समय है, हम अपने आप को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, सृष्टि का सारा रहस्य को पहचान लिया, तो अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करना है। बाबा ने एक मुरली में बोला, 84 का मुरली में, हम संगमुगी ब्राह्मण ये सोचेंगे तो भी आहो सौभाग्य, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ ये सोचेंगे तो भी बहुत ही भाग्य, इसको भी याद करे तो बहुत ही आहो सौभाग्य, बाबा ने वर्णन किया। तो संगम युग में हम सभी बाबा के बच्चे, 6 बातें बहुत ही अटेंशन रखना है, बाबा मिलने के बाद हम करना ही है। ब्राह्मण हम समझ लिया, ब्राह्मण बच्चे बन गया, तो पहला बात है अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना। सारा कल्प में किस बाबा को, किस बाप को हम ढूंढा, अभी बाबा मिला है, बाप ने अपने बच्चों को स्पेशल ऑफर दिया है। अमृत वेले का समय 2 बजे से 5 बजे का बीच में अवश्य अभ्यास करना ही है। आप घर में रहे, सेंटर पे रहे, कहाँ भी रहे, अमृत वेले स्वयं बाबा हम बच्चों के लिए वरदानों की झोली भरते रहेगा। बाबा ने बोला 5 बजे के बाद आप उठेंगे तो भक्तों का लाइन में खड़े हो जाना पड़ेगा। बाबा ने बताया कि बच्चे भक्तों का लाइन में खड़े होना बाबा को अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए बहुत ही सुंदर समय है, आप सभी पूरा अटेंशन रखना। अमृत वेले कुछ भी मेहनत हो, आप कभी कभी हमको सारा दिन भर बहुत काम करते हैं, सुस्ती आ जाता है, उस समय में भी आप अपना कर्म के हिसाब से, अपना कर्म क्षेत्र के हिसाब से, अपना शरीर के हिसाब से आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, बट 5 बजे का बीच में आधा घंटा या पौना घंटा अवश्य बाबा को याद करना। कभी कभी नींद आता है, सुस्ती आ जाते है, समझे, उस समय अव्यक्तवाणी पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ के उसके आधार से हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे पास प्रदर्शनी पुस्तक रहता है, पुस्तक को एक एक पेन पन्ना ओपन करके देखिए, जैसे आत्मा के बारे में बाबा ने बोला, तो आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का गुण क्या है, उसको सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मस्मृति सहज हो जाता है। दूसरा है मुरली क्लास, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। सारा कल्प में भगवान अपने बच्चों के साथ बात करने का, शिव बाबा अपना विषय बच्चों के साथ वार्तालाप करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मुरली। मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली मिस किया तो सर्वशक्तिवान अति प्यारे बाप के साथ का वार्तालाप को मिस किया। कोई भी बोल सकते हैं रोज मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, किस पिता ने हम बच्चों को मीठे मीठे कितना बोल के हमको श्रृंगार करते हैं, ऐसे प्यारे शब्द को सुनने का ये परम सौभाग्य के मौका है, संगम युग का गढ़ी है। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली में 5 अक्षर आता है, मा उ र ला ई। मुरली माने जैसे माँ जैसा, माँ अपने बच्चों को जैसे प्रोटेक्शन करता है, प्यार करता है, संभालते है, गोद में लेता है, ऐसे मुरली हम माँ जैसा हमको क्या करता है, प्यार करता है। देखो मीठे मीठे बच्चे माने कौन बोलता है, बाबा बोलता है ना। तो ये मुरली हमको माँ जैसा हमको पालना करता है। जैसे छोटा बच्चा कैसे भी गंदगी करे, क्या भी करे, माँ उसको सफाई करेगा, फिर बहुत प्यार करेगा, अपने गोद में लेगा, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे करेगा। ऐसे बाप भी मुरली के द्वारा हम बच्चों को प्यार करते हैं। फिर एक एक शब्द भी महावाक्य है, एक एक शब्द महावाक्य, और वो माना उत्तर है। उत्तर माना आप कोई भी मन में उलझन हो, कोई भी प्रश्न हो, हम अटेंशन से मुरली करेक्ट सुनेंगे तो हमारा मन में क्या प्रश्न है 100% गारंटी बाबा ने उत्तर देता है। तो हर प्रश्न को उत्तर मुरली के में हमको मिल जाता है। तो माँ जैसा पालन करता है, हर प्रश्न को मुरली में उत्तर मिलता है। माँ वो मुँह हो गए। फिर रामन रहस्य है, आदि मध्य अंत्य, देवा जीवा जगत भूता भविष्यत वर्तमान, तीनों लोक तीनों कालों का सभी रहस्य बाबा ने मुरली में हमको बताते हैं ना, रहस्य बताते हैं। और लामन लॉफुल श्रीमत क्या है, कैसे चलना है, दृष्टि वृत्ति कृति व्यवहार कर्म जीवन कैसे रहना, बाबा हमको मुरली में नेम सिखाता है। नेम को भी कैसे सिखाता है, प्यार से लवफुल होकर बाबा हमको सिखाता है। और ई माना ईश्वरीय महावाक्य, एक एक महावाक्य भगवान का महावाक्य, एक एक महावाक्य हमको रक्षा करने वाले, एक एक महावाक्य हमको छत्र छाया बन के हमको राह दिखाते हैं। इसके लिए दूसरा है, कभी भी संगम युग में बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा बाबा हम स्वीकार करने के बाद कभी भी मुरली मिस नहीं करना। पहला कौन सा, अमृत वेले, दूसरा मुरली कभी भी मिस नहीं करना, तीसरा इस सच्चा ज्ञान को रोज एक ना एक दूसरों को समझाना है, सर्विस करना, दूसरों को ज्ञान बांटना है, देना है। कितना देंगे उतना वृद्धि हो जाता है। बाबा अभी पिछले मुरली में वर्णन किया है, दूसरा दुनिया वाली धन हम दुना खर्च करते रहेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान धन को कितना बांटते रहेंगे वो कितना बांटेंगे उतना वृद्धि होते रहेगा। देखो ये अविनाशी ज्ञान धन केवल हम बच्चों के पास है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं। महात्मा हो, धर्मात्मा हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत बुद्धिमान हो, किसी के पास भी ये सच्चा ज्ञान नहीं है। लेकिन सच्चा ज्ञान प्राप्त किया केवल हम संगम के ब्राह्मण बच्चे, हम ही दूसरों को दुनिया को सच्चा ज्ञान देने के लिए योग्य है, दूसरा कोई भी दे नहीं सकते। इसके लिए रोज कोई ना एक को ज्ञान बांटना है। आप भट्टी में आया है ये प्रतिज्ञा करके जाना है, रोज एक ना एक को ज्ञान देना ही है, कुछ ना कुछ रीति से बाबा के घर में लेके आना। ज़्यादा कितना लोगों को भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को रोज ज्ञान देना। देखो दिन में हम कितना लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार में आते हैं, हम कोई दूसरी बात बोलते हैं, बाबा का ज्ञान अवश्य बोलना है, कुछ ना कुछ युक्ति से उनको बाबा का बच्चे बनना है, बनाना है, युक्ति बताना है, रोज आना है, बोलना, वो क्या भी गाली दे क्या भी दे कोई हर्जा नहीं है, आज या कल वो समझ में आ जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्न डालेंगे तो आज या कल फल देगा ही जरूर है। इसके लिए ज्ञान बांटना है, ये तीसरा है। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली कभी भी मिस नहीं करना, तीसरा है रोज एक ना एक व्यक्ति को ज्ञान बांटना है। सब करेंगे, बाबा का बट्टी में आया है, योग में आया है, अवश्य वृद्धि होना चाहिए बाबा का बच्चे लोग। चौथा है बीच बीच में, बीच बीच में एक बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। तीन बातें सदा याद रखना, पक्का चाहिए, चलते फिरते खाते पीते सोते हर हालत में हर समय में आत्मा परमात्मा परमधाम। एक सेकंड में आत्मा बोले तो ब्रुकुटे का सिंहासन में बैठ जाना, परमात्मा बोले तो सेकंड में परमधाम पहुंचना, बाबा को टच करना, बाबा से शक्ति लेना, फिर आना। भोजन पकाते हो, ऑफिस में काम करते हो, कहाँ भी क्या भी करते रहो, एक सेकंड भी समय मिले सेकंड में सोचना, सेकंड में मैं आत्मा ज्योति परमात्मा, बाबा बोले तो सेकंड में ऊपर जाना, बाबा को टच करना, आना। तो कितना हम ये रोज सैकड़ों बार अभ्यास कर सकते, कितना अभ्यास करेंगे उतना इस दुनिया से न्यारे बाबा को अति प्यारे प्यारे बन जाएंगे। यही एक सर्वोच्च उपाय है दुनिया से डिटैच होने का, सेकंड में ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना बाबा को देखना, परंधाम देखना, घर को देखना, बाबा को टच करना, फिर आना इस दुनिया में कारोबार करना। कितना बार अभ्यास करेंगे उतना सहज रीति से दुनिया से, दुनिया का बंधन से हम छूट जाएंगे। ये कितना पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, शाम का समय 6:30 बजे से 7:30 बजे अमृत वेले कितना महत्वपूर्ण है, ऐसे शाम का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बताया शाम को भी 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आप क्लास में जाना, योग करना है। अकस्मात क्लास में नहीं आए तो भी घर में रहते हुए भी उस 6:30 से 7:30 का बीच में आधा घंटा पौना घंटा अवश्य बाप को याद करना। रोज क्लास में तो अवश्य जाना ही है, अकस्मात शाम का समय नहीं जा पाते हैं तो आधा घंटा जरूर योग करना, अमृत वेला जैसा महत्व को हम अनुभव करना। तो पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली क्लास, तीसरा रोज एक ना एक व्यक्ति को ज्ञान बांटना है, अवश्य बांटना है, यह हमारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चौथा है बीच बीच में अभ्यास करना, सेकंड में आत्मा समझना, सेकंड में परमधाम जाना, टच होना। अभी सभी एक सेकंड में अलर्ट होकर बैठना, अपने आप को मस्तक में देखना, मैं ज्योति हूँ, अपने आप को देखना है। सेकंड में जाइए, ऊपर जाइए, बाबा परमधाम देखो, परमधाम को देखो, परमधाम अति प्यारा अति पवित्र बाबा चमक रहा है, बाबा को टच कीजिए। फिर वापस आइए, अपने आप को मस्तक में देखिए, ऐसे बीच बीच में अभ्यास करते रहना। और शाम का समय 6:30 से 7:30 अवश्य उपयोग करना। चटा है बाबा ने बोला है कि सोने का पहले, सोने के पहले रोज का हिसाब किताब बाबा को अर्पण करना, बाबा का याद में बाबा का गोद में सो जाना। बाबा 93 का एक मुरली में वर्णन किया है, रोज अपना हिसाब किताब बाबा को अर्पण करेंगे तो धर्मराजपुरी में हिसाब किताब देने का जरूरत नहीं है। आप सोचिए, रोज का रोज देना अच्छा है या धर्मराजपुरी में देना अच्छा है? रोज एक 5 मिनट 10 मिनट सोने के पहले बाबा को इमर्ज करके, बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं, अब जैसे पांडव भवन में बाबा का कमरे में देखते हैं ना, बाबा का कमरे में बाबा का ट्रांसलेट है, ऐसे विजुलाइज करना है, स्वयं बाबा मेरे सामने बैठा है। तो बाप के सामने बच्चे अपना हिसाब किताब सवेरे से शाम तक, अमृत वेले से सोने तक, हम क्या था, कैसे पुरुषार्थ था, क्या क्या किया है, सारा हिसाब किताब बाबा के सामने अर्पण करके। कोई भी एक स्वमान को लिख सकते हैं, हम अच्छा पुरुषार्थ करना है तो, जैसे मैं महान आत्मा, मैं पुण्य आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं कल्याणकारी आत्मा, ऐसे कुछ न कुछ एक समान को हमारे अंदर क्या कमी है उसको भरपूर करने के लिए मैं महान पवित्र आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसे कोई भी एक समान को 21 टाइम्स लिखना है, 21 टाइम्स 21 डेज, उस एक ही समान को हम लिख के सोने के समय उसी स्मृति में बाबा को याद करके सो जाएंगे, नींद भी अच्छा आएगा, कोई स्वप्न भी नहीं आएगा। और नींद का दुनिया में देखो, नींद नहीं आने के लिए कितना गोली लेके नींद का करते हैं। बाबा बोलते हैं बाबा के याद में एक मुरली में तो बाबा ने बोला आधा घंटे सोने के पहले बहुत प्यार से बाबा को याद करके सोएंगे, बहुत ही अच्छा नींद आएगा, सवेरे से भी फ्रेश होके उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो बाबा का ये महावाक्य है। तो ये 6 बातें हम सदा याद रखेंगे, ब्राह्मण जीवन में है, हम ब्राह्मण है, ये अवश्य करना ही है। अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना, मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करना, रोज एक ना एक को ज्ञान बांटना ही है। अकस्मात वाचा द्वारा आपको हो नहीं सकता, मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। और चौथा है रोज बीच बीच में बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। पांचवा, शाम के समय भी अवश्य योग करना है, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। और छठा है सोने के पहले बाबा को पूर्ण अर्पण करके कोई भी समान लिख के और कोई भी अव्यक्तवाणी आपके सामने रखना है। एक पेज ऐसे ओपन करना, कौन सा पेज आता है उसमें 5-6 लाइन पढ़ना है, बहुत गहरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ के उसी नशे में उसी स्थिति में सो जाएंगे। ये अभ्यास करेंगे, 6 बातें सदा अभ्यास करेंगे तो बाबा छत्र छाया बन के हमारे साथ रहेगा, हमको रक्षा करेगा। फिर और भी अच्छा पुरुषार्थ करना है तो आप चार्ट भी लिख सकते हैं। फिर बहुत ही एक सहज उपाय, देखो हम भोजन करने के समय में सवेरे नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर भोजन करते हैं, शाम को भी भोजन करते हैं, बीच बीच में कोई चाय नाश्ता वगैरह वो भी करते हैं, समझा 3-4 बार। तो उस समय से भी अटेंशन रखें तो बहुत ही पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। आप सोचिए भोजन करने के समय 20 मिनट्स आप समझिए फुल साइलेंस से बाबा का याद में रहकर, बाबा का याद में ही प्रसाद स्वीकार करेंगे तो अन्न भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, हमारा स्थिति भी शुद्ध हो जाता है। हम जगदीश भाई जी को प्रैक्टिकल देखा है, पांडव भवन में हम सभी भोजन लेने के लिए खड़े हो जाता था, जो जगदीश भाई साहब जी आता था हम सबके साथ वो भी ताली लेके खड़े हो जाता था, कितना भी लोग आओ भाई साहब उधर नहीं आता था, सबके सामने साइलेंस होके हंसते हंसते खड़े हो जाता था। तो भोजन लेके दीवार को देख के दीवार की तरफ मुंह करके साइलेंस में बैठ जाता था, एकदम साइलेंस में। हम भाई साहब को पूछा बाद में एक बार क्लास करने के समय, तो भाई जी ने बोला बाबा ने इतना सुंदर प्रसाद देता है ब्रह्मा भोजन, कितना हम बाबा का याद में खाएंगे वो प्रसाद बन जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो हम ये छोटा सा श्रीमद को भी फॉलो नहीं करेंगे तो और हम क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब ने बोला तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सोचो दिन में 3 टाइम माना 1.5 आवर या 2 घंटा हमको फ्री मिलता है, उस समय कोई भी आवश्यक नहीं है, बहुत ही बाबा को प्यार के याद करके हम अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य जीवन में हम सभी बाबा के बच्चे, योग का जीवन बहुत ही सहज, योग करना हम बोलते हैं, तो योग सहज कैसे करें। बाबा बोलता है इसको सहज राजयोग कहा। सहज राजयोग मने क्या है, इसमें 3 शब्द है, सहज, राजा और योग। तो अभी तक हमको योग बाबा के साथ करना मालूम नहीं था, अभी संगम युग में बाबा क्या है, हम क्या है, उनके साथ कैसे संबंध जोड़ना, कैसे योग करना, सहज हमको समझ में आ गया। ओके, हम योग सहज करना, क्योंकि वो बाप है, हम सभी बच्चे हैं, उनका और हमारा संबंध पहले वो भक्त था, वो हम भक्त था, वो हम भगवान, वो भगवान ऊपर है, हम नीचे है, भक्त और भगवान का संबंध बहुत डिस्टेंस था। अभी बच्चे बनने के बाद बच्चा और बाप के साथ डिस्टेंस नहीं है, बहुत नज़दीक का संबंध है। अच्छा, इतना नज़दीक होते हुए भी कभी कभी हमको मुश्किल लगता है, क्यों बोलते हैं? हम सहज राजयोग सीखते हैं, तो सहज राजयोग कब है? सहज राजा योग, तो योग सहज होने के लिए पहले हम क्या बनना पड़ता है? राजा बनना पड़ता। तो राजा कौन है? आत्मा। तो आत्मा किसका राजा है? कर्मेंद्रियों का राजा। जब तक आत्मा राजा अपना सिंहासन पर बैठने का अभ्यास नहीं करेगा, अपना सिंहासन पर टिकेगा नहीं है, तो कर्मेंद्रिया प्रजा अपना कंट्रोल में नहीं आएगा। कितना भी योग करेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसके लिए योग को सहज करना, तो पहले हम क्या बनना है? राजा बनना। आध्यात्मिक जीवन का, ईश्वरीय जीवन का, बाबा का बच्चे बनने के बाद पहला का अभ्यास, पहला अभ्यास संपूर्ण सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति। जब तक हम आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियस में स्थित नहीं होता, सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, स्वयं राज्य पर अधिकार नहीं करेंगे, राजा बन के नहीं बैठेंगे, तब तक कर्मेंद्रियों का नियंत्रण कर नहीं पाते। इसके लिए ये अभ्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वयं को सदा क्या समझना है? आत्मा समझना, राजा समझना। तो राजा समझकर, राजा सिंहासन पर बैठकर, अपना निज स्वरूप में स्थित होकर कर्मेंद्रियों के ऊपर आर्डर करेगा, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर आर्डर माने करेगा, तो सभी आर्डर मानेगा, तो योग क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। तो सहज योगी बनना अर्थात पहले संपूर्ण आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियस में रहना है। हमारा स्थिति, हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा है उसको देखने का मीटर माना सोल कॉन्शियस। आप आंख खोलते ही किसी को देखेंगे तो क्या स्मृति आना चाहिए? ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा। आत्मस्मृति स्मृति में देखेंगे तो आत्मा का गुण एमर्ज हो जाता है। वो कोई व्यक्ति कैसे भी हो, उसके अंदर क्या है? आत्मा। तो आत्मा का अनादि स्वरूप है ज्योति स्वरूप। आत्मा किसका संतान? बाबा का संतान। आत्मा का घर कहाँ? परंधाम। तो आत्मा को देखने का, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर देखने का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके प्रति रहम की भावना, सबके अंदर के आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी से वो हमारे अंदर इमर्ज हो जाता है। आत्मा सहज रूप में शक्तिशाली बन जाता है, राजा बन जाता है। रियोग अति सहज। तो बाबा कभी कभी बोलते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। एक एक शब्दों में, एक एक सेंटेंस में बाबा ने सारा रहस्य खोल दिया। जैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसमें भी तीन शब्द है, स्व दर्शन चक्र। स्व माना क्या है? आत्मा। दर्शन माना क्या है? देखना। कैसे? चक्र जैसा, माना स्वयं को देखो चक्र देशा। सारा कल्प में कभी भी आपने आपको देखने का मौका नहीं मिला है ना, केवल शरीर को देखा, व्यक्तियों को देखा, वस्तुओं को देखा, साधनों को देखा, दुनिया को देखा, लेकिन अपने आप को देखने का ये सर्वश्रेष्ठ मौका है। इसके लिए बाबा कल मुरली में बताया, स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल आपका होना चाहिए, लेकिन विष्णु का हाथ में स्वदर्शन चक्र दिया, क्योंकि वो संपूर्णता का निशानी है, लेकिन ब्राह्मणों के है स्वदर्शन चक्रधारी का निशाने। अभी स्व दर्शन, स्वयं को दर्शन करना अर्थात अपने आप को देखना। कैसे? मैं अनादि में कैसे था, परंधाम में, बिंदु रूप में, आदि में कैसे देवता स्वरूप, मध्य में कैसे पूज्य स्वरूप, संगम में ब्राह्मण स्वरूप, अभी कौन मिला, बाबा मिला, बाबा का रूप, बाबा का गुण, बाबा का कर्तव्य, बाबा का धाम, स्वयं का रूप, गुण, कर्तव्य, काल, सारा स्वयं को देखेंगे तो पूरा चक्र में पूरा आ जाता है। स्वयं भी आ जाएंगे, बाबा भी आएगा, चक्र भी आएगा, परमधाम आएगा, सृष्टि चक्र में कैसे पार्ट बजाता है सारा याद आएगा। ये चक्र को निरंतर बुद्धि में सिमरण करते रहेंगे। स्वदर्शन चक्र सदा जागृत रहेगा, परदर्शन, परचिंतन, परमत से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। तो माया का गला, इसके लिए ये दर्शन करना, ये दर्शन करते रहेंगे तो व्यर्थ से, माया से सदा मुक्त हो जाएंगे आत्मा। व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा तो विजयी बन जाएंगे। तो विजयी प्राप्त किया तो विश्व का मालिक, स्वराज्याधिकारी, सो विश्व राज्याधिकारी। तो स्वयं को दर्शन करें, स्वदर्शन चक्रधारी बने तो चक्रवर्ती महाराजा, माया से, व्यक्त से मुक्त हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे तो चक्रवर्ती सहज बन जाएंगे। बाबा ने बहुत ही सहज रीति से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बारे में बोलता है, पुरुषार्थ करना, तीव्र पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ माने क्या है? पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना अर्थ सहित, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे अपने आप को समझना है। बाबा जो है, जैसा है, वैसे ही यथार्थ रूप में पहचानना, स्वयं को भी यथार्थ रूप में पहचान कर, उनको भी कैसे है वैसे ही समझ कर, उनके साथ संबंध जोड़ना, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुष अर्थात आत्मा का अर्थ स्वरूप में, आत्मा कैसे है वैसे अपने आप को स्थित करना। एक बार हम दादी जानकी जी, हम सभी को, निवासियों को मिलने के समय में प्रश्न पूछा, दादी आप इतना श्रेष्ठ स्थिति को कैसे पहुंचा, आपका पुरुषार्थ का गति क्या है, पुरुषार्थ का रहस्य क्या है, हमको भी बताना। तो दादी जी ने बोला कि पुरुषार्थ बहुत ही ईजी है, सहज है। अमृत वेले से सारा दिन, सारा अमृत वेले से रात तक बाबा ने क्या क्या श्रीमत दिया है, हर छोटी छोटी श्रीमत को भी फॉलो करना, एक छोटा सा श्रीमत को भी उल्लंघन नहीं करना, यही है उन्नति का साधन, यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना अमृत वेले से सोने तक बाबा ने क्या क्या श्रीमत दिया है, हर श्रीमत को फॉलो करना। आपको ज्ञात होगा 31 12 1970 का मुरली में अमृत वेले से रात तक हम क्या क्या पुरुषार्थ करना, हम कैसे कैसे अपने स्थिति को चेंज करना, परिवर्तन करना, बाबा ने स्पष्ट किया है। आप एक दो बार पढ़िए, पूरा अनुभव हो जाता है पुरुषार्थ के लिए। बहुत ही अच्छा बाबा ने मेथड बता दिया है। तो बाबा ने कभी कभी बोलते हैं, बच्चे नष्ट मोही बनो तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। नष्ट मोही माने क्या है? देखो, नष्ट होने वाला चीज क्या है? शरीर सहित सारा वस्तु, व्यक्ति, दुनिया, सब नष्ट होने वाला। तो नष्ट ना होने वाला चीज कौन सा है? आत्मा और परमात्मा और बाबा का ज्ञान। तो नष्ट होने वाला स्मृति का मोह त्याग करना। तो ये नष्ट होने वाले के प्रति हम याद रखेंगे, उसके प्रति हमारा कनेक्शन है, तो बाबा ने क्या स्मृति दिया है वो स्वरूप में स्थित होना नहीं पाता है। इसके लिए बहुत ही बाबा ने स्पष्ट किया, नष्ट होने वाला के ऊपर त्याग करना तो ऑटोमेटिकली स्मृति स्वरूप सहज हम बन जाएंगे। तो बाबा ने कभी कभी बोलते, बच्चे बालक सो मालिक, हम बालक बनेंगे तो मालिक बन जाएंगे। तो बालक कौन है, मालिक कहना कौन है? बालक बनेंगे तो मालिक बन जाएंगे। आत्मा बालक किसका बालक है? शिव बाबा का। तो हम जब तक आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं होते, आत्मा कॉन्शियस में नहीं है, उस समय हम क्या नहीं है? बालक नहीं है। किसका बालक? शिव बाबा का। अच्छा, शिव बाबा का बालक बनना माना हम क्या कर क्या रहना पड़ता है? आत्मा स्वरूप में स्थित होना। तो आत्मा स्वरूप में कितना हम स्थित रहेंगे उतना हम उनका बालक, तो उनका बालक बनेंगे। तो बाप और बच्चों का संबंध, बाप का प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी? बच्चों का। तो बालक ही बाप का प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएंगे। तो बालक सो मालिक, एक ही शब्द में बाबा ने सारा रहस्य खोल दिया। तो हम बालक बनना माना आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित होना। बाबा कब रोज मुरली में एक न एक रीति से बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो बोलता है। तो एक्चुअली हम सभी को 7 दिन का कोर्स में, पहला दिन का कोर्स में आत्मा का पाठ पक्का हो गया है ना, उसको एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा हर मुरली में बच्चे आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो बोलता है। इसका रहस्य क्या होगा? आत्मा समझ बाप को याद करो। ओके, अभी आत्मा समझना, आत्मा अभिमानी बनना और देह अभिमानी बनना। देह अभिमान माना बहुत याद रहे, देह माना देह, देह का वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपत्ति, इसका अभिमान मानी कितना संपत्तिवान है, मेरा देह इतना सुंदर है, मैं शक्तिशाली हूँ, इसके मेरा साधन इतना है, मेरा घर इतना अच्छा है, मेरा संबंधी बहुत अच्छा है, ये सारा देह और देह का संबंधित के ऊपर हम अभिमान रखना, वो भी विनाशी, ये भी विनाशी। देह अभिमान विनाशी का चीज़, दुख के कारण बन जाता है। फिर बाबा ने बोलते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनना माने क्या है? देही अभिमानी, देही माना आत्मा। तो देही के अंदर क्या है? देही का ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, स्नेह, आनंद, शक्ति, ये सप्त गुणों का पुंज है आत्मा। ये 7 गुण आत्मा के अंदर ओरिजिनल क्वालिटी से, सीड क्वालिटी से, उसका बेस के आधार से बाकी सब गुण, सब शक्तियां अपने आप आ जाते हैं। तो सीड क्वालिटीज कौन सा है? ज्ञान संपन्न आत्मा। मैं साधारण नहीं हूं, मैं ज्ञान संपन्न आत्मा हूं। मेरा जैसा ज्ञानवान दुनिया में कोई नहीं है। मेरे को कौन ज्ञान दिया है? ज्ञान सागर परमात्मा ने ज्ञान दिया। ज्ञान सागर का ज्ञान मेरे पास है। कोई भी महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, ऋषि, मुनि, साधु, संत, पढ़े लिखे कितना भी व्यक्ति हो, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे पास ज्ञान है। किसका ज्ञान है? स्वयं का ज्ञान है। भगवान क्या है उनके प्रति ज्ञान है। मैं कितना भाग्यवान, ये ज्ञान का नशे में रहना है। इस नशा कुछ में दुनिया में किसी का भी है? सोचिए, कितना भी बड़ा हो, गीता पाठ क्या भी करो, उनके पास कुछ भी ज्ञान है। गीता पाठ कितना भी कर सकते हैं, कंठ कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ रहस्य मालूम नहीं है। तो गीता में कितना वर्णन किया, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, ऐसे बोल दिया। ज्योति में महाज्योति हूँ मैं, इस तमस की दुनिया में दूर रहने वाले ज्योति हूँ। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, ज्ञान सागर हूँ मैं, ज्ञान से मेरे को देख सकते हैं। कौन ज्ञान के आधार से मेरे को देखता है? वो व्यक्ति लोग मेरे को अपना दिल में समा लेता है, ऐसे वर्णन किया। वो कौन बोल सकता है? दुनिया वाले खंट करता है, लेकिन वो समझ नहीं आता। तो बाबा के बच्चे को समझ में आ गया। तो इस ज्ञान के नशे में रहना है, इस अभिमान में रहना, ये शुद्ध कुमारी है, शुद्ध नशा है। तो हम ये ज्ञान में आने के बाद भी हो तो वो भी थोड़ा सा अच्छा है, ये भी अच्छा है, दूसरों के प्रति भी थोड़ा सा अट्रैक्शन है समझो, तो ज्ञान का अभिमान में परसेंटेज है। इसके लिए आत्मा अभिमानी माना पहला नशा सच्चा ज्ञानवान हो, ज्ञान सागर का संतान हो, ये नशा। अच्छा दूसरा है पवित्र हूँ मैं, कौन हूँ? पवित्र मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ मैं। ये नशे में रहना है, इस नशा किसको है? वो आत्मा अभिमानी। और मैं कौन सा है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्वधर्म शांति है मेरा, ओरिजिनल स्वधर्म ही शांति है। इस स्वधर्म में स्थित होना, दुनिया में अशांति का वातावरण है, हमारा इर्द गिर्द चारों तरफ अशांति अशांति है। मैं भी अशांति में, तो मैं भी थोड़ा सा अशांत हो गया समझो, मैं आत्माभिमानी नहीं है, परसेंटेज है। कितना भी अशांति हो, मेरा शांत स्थिति, मेरा स्वधर्म का स्थिति, मेरा निज स्वरूप का स्थिति उस अशांत वातावरण को परिवर्तन करना चाहिए। मैं भी अशांति में अशांति हो गया समझो, मैं शांत स्वरूप आत्मा नहीं, आत्माभिमानी में परसेंटेज है। मैं इतना शांत स्वरूप, इतना आत्मा निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अशांति का वातावरण को भी शांत कर सकते हैं। इतना नशा आत्माभिमानी स्थिति में, मैं शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति है। चौथा है मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप ये मेरा अभिमान है, सुख है, दुख का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। चारों तरफ दुख है, दुख का फील हुआ मेरे को, लेकिन मैं दुख के वातावरण में मैं भी थोड़ा दुखी हो गया तो मैं सुख स्वरूप आत्मा नहीं है, अभिमानी नहीं है, परसेंटेज है। इसलिए अपने आप को चेक करना, ये सातों गुणों के देख के हम कितना आत्माभिमानी है। क्यों बोलता है बाबा? आत्माभिमानी बनकर मुझे बाप को याद करो। तो आत्मा स्नेह स्वरूप माना, दुनिया में कितने भी हमको अपकार करने वाले, कितना भी दुख देने वाले हैं इर्द गिर्द में चारों तरफ, लेकिन उनको भी हम उपकार करना, सुख देना, भलाई करना, ऐसे ख्याल मेरे अंदर उत्पन्न हुआ तो ऑटोमेटिकली हम सुख स्वरूप आत्मा है, मेरा सुख का वाइब्रेशन उनको अनुभूति कर लेता है। तो ये सातों गुणों में हम संपन्न बनना, जिसके लिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना, तो आत्माभिमानी को बाबा को याद करना बहुत ही सहज है, सहज है। इसके लिए आप सभी भट्टी में आया है, ये बहुत ही सुंदर अभ्यास करने का मौका है। कितना चाहिए उतना साइलेंस में रहना, केवल साइलेंस में रहना, इधर आप सुनेंगे उधर जाके बात करेंगे, आवश्यक नहीं है ना। सब कुछ त्याग करके आया 3 दिन के लिए, इसके लिए बहुत ही आवश्यक संपूर्ण साइलेंस रखो, कुछ भी हो जाए, कितना आवश्यक है अव्यक्त वॉइस में थोड़ा बोलो, किसी भी कारण से आवाज़ में नहीं आना, आवाज़ में आएंगे, आवाज़ में आएंगे शक्ति कम हो जाता है। इसके लिए आप सभी का निवेदन है, बहुत ही अच्छा भाई साहब ने आया है, आपको आगे का क्लास कंटिन्यू करेगा। आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।